तो सोने के आदाब थोड़े देखें, ये सोने के नहीं है, सोने के आदाब, स्लीपिंग मैनर्स। नींद अल्लाह की नेमत है, इंसान के लिए नींद नागुजीर है। आप देखिए, इस पैदाइश से मौत तक हम कितनी दफ़ा सोते हैं और कितनी दफ़ा उठते हैं। अक्लमंद वो है जो हर नींद के वक्त मौत को याद करे। सोने का सबसे बड़ा अदब, हर सोते वक्त मौत को याद कीजिए, क्योंकि एक दिन हम सोएंगे तो उठेंगे नहीं। क्यों? दुआ पढ़ते हैं अल्लामा बिस्मी का, अमूतु वाहिया। फिर इसी तरह से याद रखिए, सोने से पहले ये नियत कीजिए, इसलिए सो रही हूँ ताकि वक्त पे उठकर नमाज अदा कर सकूं और थके हुए जिस्म को राहत दूं। तो इस अमल से आपकी नींद इबादत बन जाएगी, क्योंकि इंसान को हर उस अमल का अजर मिलता है जो वो अच्छी नीयत से कर देता है। फिर इसी तरह से सफ़र में रात को अकेले नहीं जाना चाहिए ना सोना चाहिए। मुसनद अहमद की रिवायत है 5650। खुलासा क्या है? अकेले रात बिताना या सफ़र करना पसंदीदा नहीं है। आपने फरमाया, जब इंसान अकेले रात गुजारता है तो शैतान उससे खेलता है। ये बात बड़ी अहम है, गौर से समझिएगा। अकेले में शैतान बहुत आता है, अपने घरों में भी। कोशिश करें कि बिल्कुल अकेले बच्चे को ना छोड़ें, बिल्कुल अकेला भी नहीं होना चाहिए और एक बिस्तर पे दो बच्चे भी नहीं होने चाहिए। ये तो हदीस आपने कहीं जगह पढ़ी होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब इंसान सोने का इरादा करे तो उसको उससे पहले वुज़ू कर लेना चाहिए। बुखारी की रिवायत है कि जब इंसान ताहिर हालत में सोता है, हर करवट पे फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। फिर इसी तरह से बिल्कुल खुली जगह, बग़ैर किसी ओट के, यानी मसा आप किसी छत पे हैं जिसकी दीवारें नहीं हैं, उस पे ऐसे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इंसान रात को करवट ले और नीचे गिर सकता है। अबू दाऊद की रिवायत 5041 है। अपने नफ्स को हर ख़तरे से बचा लेना चाहिए। फिर इसी तरह से सतर का अहतमाम कीजिए कि रात को सोते में सतर ना खुल जाए। फिर इसी तरह इस हाल में सोइए, ये भी हाईलाइट कीजिएगा, ये है मामला। इस हाल में सोइए कि किसी मुसलमान के लिए दिल में कीना और हसद ना हो। सूरत हशर आयत 10 में तो दुआ सिखा दी कि हमारे दिलों में दूसरे मोमिनों के लिए कोई कीना अल्लाह ना रखना, और ऐसा शख्स जन्नती है जो अपने दिल से दूसरों का हसद कीना निकाल दे। सोने से पहले पेट भरकर खाना खाने से गुरेज कीजिए, यह नुकसानदेह भी होगा और आपकी नींद ज़्यादा हो जाएगी, फजर पे नहीं उठ सकेंगे और पेट भी बोझल होगा, सेहत ख़राब होगी। फिर इसी तरह से सोने से पहले सुरमा लगाना भी सुन्नत है। तिर्मिज़ी 1757। आँखों की हिफाजत होती प्योर सुरमा। अब ये नहीं कि सोते वक्त आप आई लाइनर और काजल लगा के फिरें, कि ये सुन्नत है। सुरमा एक ख़ास थोड़ा सा मंगा के रख ले, सोते वक्त लगा लीजिए। फिर इसी तरह अगर हाथों में कोई खाने का असर, कोई गंदगी लगी है तो सोने से पहले उसको धो लीजिए। अबू दाऊद 3852। वजह, हाथों में से खाने की खुशबू आएगी, रात को चींटियाँ आ जाएंगी किस करने, तो कीड़े मकोड़े आने का डर होता है। अब हमारे घर तो इतने माशाल्लाह प्योर और हाइजीनिक है, लेकिन लोग खुली जगहों पे भी सोते थे, तो ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। और सोने से पहले जो वुज़ू करना है वो हदीस बुखारी की 1247। शैतान से भी हिफाजत होती है। फिर इसी तरह जुनाबत की हालत में अगर गुसल में सुस्ती हो तो सोने से पहले जिस्म को पाक कीजिए, वुज़ू या तयम्मुम कर लीजिए। बुखारी 288, मुस्लिम 699। अगर फजर से पहले ना उठ सकते हो तो सोने से पहले वितर पढ़ लीजिए। बुखारी 1981, मुस्लिम 1672। और सोने से पहले तौबा कर लीजिए, क्या पता उठेंगे कि नहीं उठेंगे। फिर इसी तरह सोने से पहले कुरान पाक की कुछ सूरतों की तिलावत, मसलन आप सभी जानते हैं जी, आयतुल कुर्सी पढ़िए, बुखारी 231, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें 4008 और मुस्लिम 1880, और मुअव्वज़तैन इसकी भी तिलावत करनी है। आजकल सोने जागने के इज़कार मिलते हैं, आप उनको भी कम से कम सुनते जाइए और साथ पढ़ते जाइए, लेकिन इख्तमाम करना चाहिए। फिर सोने के वक्त दरवाज़ों को बंद करना चाहिए, शैतान कोई बंद दरवाज़ा नहीं खोलता। मुस्लिम की रिवायत है 5246। घर की खिड़कियां और बाहर वाले रास्तों को बंद करें ताकि बाहर से कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ ना आ सके, यानी मतलब यह कि केयरफुल रहकर सोइए, चिराग बुझा कर सोइए, ये जो लाइट चलती है ना, कैंडल लाइट या मोमबत्ती है, इसको बुझा दीजिए। अबू दाऊद की रिवायत है 5247। और बुखारी 6295। एक शैतान है जो सिर्फ रात को आग लगाने का काम करता है। कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उससे बचिए, यानी कोई ख़तरनाक चीज़ अपने पास ना रखिए। फिर जिन बर्तनों में खाना या पानी रखा उसको ढांप दे। बस लोग किचन काउंटर पे खुला खाना छोड़ देते हैं, ये बहुत ही नामुनासिब है। सही मुस्लिम की रिवायत है 5246। फिर सोने से पहले नफ्स का मुहासिबा। पीछे पढ़ कर आए हैं हम लोग, आज क्या किया, क्या बोली, लोगों से कैसा मामला रहा, अल्लाह के हकूक में किस कदर अदायगी, ये सारे पॉइंट इंशाल्लाह आप वीक की चेकलिस्ट में डालेंगे। कोई कमी पेशी नज़र आए तो इस्तग़फ़ार कीजिए और अगले दिन उस काम को अच्छा करने की नीयत कीजिए। और जब सोएं तो कब्र की तवील नींद को याद करिए, जहां अंधेरा होगा, ना दोस्त ना साथी, सिर्फ अमल सवाले होंगे या फिर बुरे अमल होंगे, इसको याद करते हुए सोइए। फिर इसी तरह सोने से पहले नीयत कीजिए कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगी। नीयत करके सो जाए, ना भी उठ सके तो अजर होगा, लेकिन नीयत खालिस होनी चाहिए। इब्ने माजा 1344। बिस्तर को कपड़े के पल्लू से 3 बार झाड़िए और बिस्मिल्लाह कहिए। बुखारी 6320, मुस्लिम 6892। और सोते वक्त मुवज़्ज़तैन पढ़कर हाथों पे फूंक मारें इस तरह से, और इसके बाद इसको जहाँ तक भी हाथ फैला जा सके जिस्म पे फेर लें। नबी सल्लम की ये सुन्नत है। फिर इसी तरह जब जल्दी सोएं तो बाजू फैला लें, देर से सोएं तो हथेली पे टेक लगाएं। यानी जल्दी सोएं से मुराद ये है कि स्ट्रेच कर सकते हैं आप बॉडी को। अगर आप अपनी रिलैक्स्ड होकर सही नींद सो रहे हैं तो ये हाथ जो है ये इस तरह से, यानी हाथ के नीचे, फिर बाद में जिधर भी चले जाएं। और ये रिवायत सही जामे की है 4752। ईशा पढ़े बगैर नहीं सो सकते, ये बड़ा बड़ा लिख लें, ईशा के बगैर नहीं सो सकते, जैसे सीट बेल्ट लगाए बगैर गाड़ी में सफ़र नहीं करते। ये बुखारी की रिवायत है 568। ये सीट बेल्ट लगाने वाली बात बुखारी में नहीं है, इसको ना लिखिएगा। फिर चित लेट कर, सीधा लेट कर एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। लेटने का बड़ा ही बेहुदा तरीका होता है। ये मुस्लिम 5501 है और सतर खुलने का डर होता है। दाईं करवट पे सोइए। कैसे कि लेफ्ट साइड अप हो और राइट साइड नीचे हो। बुखारी 247 और 6311। दाएं हाथ को गाल के नीचे रख कर दुआ कीजिए। 3 बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा किनी अजाबका यौम तबसु इबादक। अबू दाऊद 5059। ए अल्लाह, जिस दिन तो अपने बंदों को उठाएगा तो मुझे अपने अजाब से महफूज रखना। ये दुआ पढ़कर सोएं और आप देखिए हर दुआ का मीनिंग है। फिर नींद से पहले के अस्कार पढ़ने की हिर्स कीजिए, जो पढ़ सकते हैं पढ़ें। फिर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बुखारी 7395 और मुस्लिम 6882 है। तो आप देखिए कि जब इतने काम करके सोएंगे तो फिर सोना इबादत बनेगा। अब उठ गए सुबह नींद से बेदारी, ये भी एक नेमत है, एक नई ज़िंदगी, एक नया दिन, नए अमाल करने का अल्लाह ने आपको मौका दिया। एक दिन हम नहीं उठेंगे, आज उठ गए हैं तो शुक्र कीजिए। पहली चीज़ जागने के आदाब में क्या है, कायनात पे गौर व फिक्र। इन नफी खल्क़ समावाती वल अर्द से लेकर आखिर तक सूरत आले इमरान का जो रुकू है उसका मैसेज क्या है, तदब्बुर। कायनात में गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर बेदार होकर चेहरे को दोनों हाथों से मले इस तरह से, जैसे वो नींद का खुमार दूर किया जाता है। बुखारी की रिवायत है 4570। फिर जिक्र कीजिए इस दुआ के साथ, जज्बे के साथ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। सोचिए ज़रा, सारी तारीफें उसने जिसने ज़िंदा किया, बाद अमा अमातना उसके बाद के हमें मार दिया, वही ले हिन्न नशूर, और उसी की तरफ पलटना है, तो पहाड़ों की तरह दुआएं ना पढ़ा करें, रटी हुई शौक के साथ तदब्बुर के साथ। फिर बेदार होते मिसवाक करना अल्लाह के नबी का अमल था। मुस्लिम 596। 3 दफ़ा हाथों को धोइए, पता नहीं रात हाथ कहाँ लगा होगा। सही मुस्लिम 43 और बुखारी 162। वुजू करना चाहिए, बुखारी 3295। और कुव्वत से, ये जो लेफ्ट हैंड है ना, यहाँ हाथ रख के, ये जो हड्डी होती है ना इधर, यहाँ नहीं इधर, 3 दफ़ा पूरी ताकत से नाक झाड़ना सुन्नत है। बुखारी की रिवायत है 3295। आपने फरमाया ये कोठरी, ये जो है ना जगह, शैतान इधर रात गुजारता, तो इसको जब आप झाड़ लेते हैं, इस्तिनसार कहते हैं इसको, स्वासे नसर जैसे ना वो लफ्ज़ है, तो शैतान फिर जिस्म से निकल जाता है। ये यहाँ रख के ऐसे इधर इसको करेंगे, और हाथ में ज़ाहिर कोई नैपकिन है या अगर आप टूटी में पानी के साथ करें तो बहुत अच्छा। 3 दफ़ा मुबालगे के साथ निकाले, इवन कुछ भी ना निकले, कुछ ज़रूरी नहीं कि आपके नाक में कोई रतूबत हो, लेकिन इंशाल्लाह शैतान इससे भाग जाएगा। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए दो नफिल पढ़िए, नमाज पढ़नी है। बुखारी 1142 और घर वालों को जगाना है ताकि वो भी नमाज़ पढ़ें। अबू दाऊद 1308। जल्दी बेदार होना चाहिए, बहुत देर तक नहीं सोते रहना चाहिए। तिर्मिज़ी 1212। फिर बिस्तर को जागने के बाद क्या करना चाहिए, ये जुमला आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। उठते ही बिस्तर को तरतीब से रखिए, लपेटिए, ये भी इस्लामी अदब है, क्योंकि जब तक घर में बिस्तर खुले रहते हैं दोबारा सोने को दिल करता है। आजमा कर देख लें, आप उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर सही कर दें। अगर आप सफाई पसंद है नमाज के बाद, आप सिर्फ इसलिए भी नहीं सोएंगी कि बिस्तर सही हो गए, और वो गरम गरम क्विल्ट, और अब्बास तो कहते ठहरो मैं भी आई, उसको ऐसे ही छोड़ के सीधा जाते हैं, पूरा बिस्तर उठा दीजिए, उसको हटा दें, चीज़ों को सीधा कर दें, ताकि आपको फिर ये दोबारा सोने का दिल ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे हम अब जागते हैं, अल्लाह ताला अभी हमें जागता ही रखे, और वो वक्त ना आ जाए कि जिसके बाद हम लोग फिर जाग ही ना सकें। अब आप देखिए कि दीन तहारत का दीन भी है तो पाकी का दीन है। कज़ाए हाजत, जिसम में दिन भर कुछ ना कुछ चीज़ें जो जाती हैं उनको बाहर निकलना होता है, तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को, नंबर एक अमीर या गरीब, बादशाह या वज़ीर, आलिम या मुतालिम, हर एक के साथ कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो उसको खुद अपनी करनी होती हैं। इससे भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें क्या होंगी कि उस पे बंदे को अजर मिले। कज़ाए हाजत, जिसम से एक्सक्रीशंस का निकलना, वेस्ट का डिस्पोजल, लेकिन उसमें अजर मिले, इतना प्यारा दीन है। एक शख्स ने ताना दिया था जो यहूदुल नस्ल था, कहने लगा वो मुसलमानों, तुम्हारा नबी तुम्हें बैतुल खला में जाने के भी तरीके सिखाता है, टॉयलेट कैसे यूज़ करना है। तो सहाबी ने कहा हाँ, हमें फ़ख्र है, अल्लाह ने हमें वो लीडर, वो कायद दिया जो हमें बैतुल खला के भी तरीके सिखाता है। ये भी देखिए कि आप बैतुल खला या रेस्टरूम में जाना भी इबादत है। क्या करें, इसके चंद आदाब क्विकली लिख लें। दूर जगह तलाश करें, पहले लोग खुली जगहों पे जाते थे तो इंसानों से थोड़ा दूर जाना चाहिए, तिर्मिज़ी 20, ताकि लोग देख ना सकें, किसी की ओट में चले जाएं। खैर हमें तो इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ ऐसी हाथ में ना लेकर जाएं जिसमें खुला हुआ अल्लाह का जिक्र हो, कुरान मजीद का कोई वर्का पेज, अगर आपके बैग में, और आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, इट्स ओके, खुली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह अल्लाह का नाम लिखा, नबी का नाम, ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, ये वैसे भी इस्लामी कल्चर नहीं है। फिर इसी तरह अगर आपकी जान पहचान के कुछ लोग पास हैं तो उनके हवाले सामान करके खुद खाली हाथ जाइए, पानी साथ लेकर जाएं और पानी इस्तेमाल कीजिए। बुखारी 143। खुली जगहों पे हों, पानी नहीं है तो फिर वही, जैसे हम तहारत में इसकी काफ़ी डिटेल्स पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब जगह इस्तेमाल कीजिए, और बिल्कुल नीचे बैठकर अपना सतर खोलिए, छींटों से बचना चाहिए, सायादार जगहों पर नहीं करना चाहिए इस काम को, मुस्लिम 618। और इसी तरह गुसल करते हुए भी पर्दे और ओट का इंतज़ाम करना चाहिए। ये तकरीबन सारे वही मैनर्स हैं जो आप लोग किताबो तहारत के नाते से पढ़ चुके हैं। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए इल्ला ये कि उसकी कोई रीज़न हो। और इसी तरह से अंदर जाने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। क्या दुआ है वॉशरूम में जाने की? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और अंदर जाते हुए लेफ़्ट फुट यानी बायां पाँव जो है वो अंदर रखिए, क्योंकि बैतुल खला गंदगी की जगह है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बिला वजह अंदर ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। अगर मौत आ गई तो क्या होगा? कुछ बच्चे, कुछ बड़े बहुत देर लगाते, तो उनको सिर्फ ये समझाएं कि अगर उस दौरान वक्त आ गया तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी डेड बॉडी वॉशरूम में से निकले। दाएं हाथ से प्राइवेट पार्ट को नहीं छूना चाहिए, बुखारी 154, क्योंकि दाएं हाथ खाने पीने का। इसी तरह दाएं हाथ से इस्तंजा भी नहीं करना चाहिए, मुस्लिम 613 और बुखारी 154। हड्डी और मैंगनी से इस्तंजा नहीं करना चाहिए, ढेलों से करना है। ये सब कुछ हम पूरी करके पूरी तरह फारिग होना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना बिला वजह देर करनी चाहिए। और इसी तरह से जब बाहर निकलें तो क्या पढ़ेंगे? गुफरान का, किस बात पे गुफरान का? तेरी बख्शिश, वजह क्या की है, गुनाह करके आए हैं। उलमा कहते हैं कि ये गुफरान का क्यों, क्या अल्लाह इतनी देर तेरा जिक्र नहीं कर सकी? वॉशरूम में इंसान जिक्र नहीं कर सकता तो इस पे अल्लाह से बख्शिश की तलब करता है एक इंसान। फिर इसी तरह बाहर निकलें तो दायां पांव बाहर रखें। और ये गुफरान का वाली जो हदीस अबू दाऊद की 30 और तिर्मिजी 7। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला का शुक्र कीजिए कि उसने फारिग किया, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। और फिर आखिरी चीज़ जिस पे इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को किसी हद तक पूरा ख़त्म करेंगे, वो है लिबास। क्या लिबास भी दीन का हिस्सा है? बिल्कुल जी हिस्सा है। सूरत आराफ 31, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ए औलाद आदम हर इबादत के वक्त अपनी जीनत इख्तियार करो। याद रखिए कि लिबास से इंसान का जिस्म ढकता है, अल्लाह की नेमत है। शौहर को बीवी का और बीवी को शौहर का लिबास कहा, अंतुम लिबासुल्लहुन्ना वहुन्ना लिबासुल्लकुम। और वो तकाबुल आप सुन चुके हैं कि क्यों लिबास इंसान के ऐब छुपाता है और उसके लिए। इसी तरह सूरत आराफ 26, लिबास खूबसूरत भी हो सकता है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम व रीशा, दो मकासिद है, युवारी सौआतिकुम व रीशा, सतर को ढांपे और जीनत भी हो। तो लिबास के दो बड़े मकासिद हैं। मैं इसमें एक तीसरा अपनी तरफ से डाल देती हूँ, जिससे बात समझती है कि लिबास इंसान को हैवान से मुमताज़ करता है। जानवर कपड़े नहीं पहनते, इंसान कपड़े पहनते हैं। ये जो डार्विनिज्म के थ्योरी के जरिए बेहयाई और औरियानी फैलाएगी, इसकी एक बहुत बड़ी पीछे वजह ये भी थी, एक दफ़ा इंसान को जानवरों की औलाद कह दो तो फिर हम कहेंगे जानवर कपड़े नहीं पहनते तो हम क्यों पहने, नेचुरल ड्रेस, जिस हाल में दुनिया में आए थे उसी में रहते। फिर इसी तरह से जानवर शादी नहीं करते तो हमें शादी की ज़रूरत नहीं, वहाँ फ्री सेक्स है तो इधर है। जानवर भी अपने बच्चों का किसी हद तक तो ख्याल रखते हैं लेकिन माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो हमें भी बच्चों को तो देखना है लेकिन माँ बाप को पकड़ कर ओल्ड होम्स में डाल दें। तो वो जानवरों के साथ जोड़ने के पीछे एक पूरा एंटी इस्लामिक लाइफस्टाइल था। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लिबास जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस तरीके से आपको बताया कि पहली बात है कि लिबास को नेमत समझिए। कितने लोग हैं जिनके पास लिबास नहीं है? अल्लाह का हक है कि इंसान अपने आप को लिबास में रखे। बगैर लिबास के इंसान क्या है? गोश्त का एक पहाड़। गाय भैंस बकरी और एक नेकेड इंसान में क्या फ़र्क है? लेकिन आज किस तरीके से मत मारी जा रही है इंसानों की, स्मूदीज नेकेड, समझ गए होंगे, अमेरिका में रहते हुए तो है ना। मैंने जब खुद हम रहते थे इधर नॉर्वे जाने से पहले, ये ब्रांड तब नहीं था। ये मेरे लिए पिछले 5-6 साल की पैदावार है। अभी चंद दिन पहले एक खाने का डब्बा था, कोई चीज़ थी तो मैं दिखा रही थी जो मेरे पास थी, क्या लिखा हुआ था उस पर, यही लफ्ज़ लिखा हुआ है। यानी खाने के जरिए से आपको फीलिंग्स दे रहे हैं, इट्स ओके। यानी इस लफ्ज़ की हया ख़त्म हो गई। तो बहरहाल लिबास को नेमत समझिए। दूसरी बात है, लिबास में तवाज़ो होनी चाहिए। तिर्मिज़ी 2481, कीमती और फ़ख्रिया लिबास नहीं पहनने चाहिए जिसको देखकर दूसरों के अंदर बड़ा बनने का शौक पैदा हो। साफ़ सुथरे कपड़े हों, लिबास जूता साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत भी हो सकता है। सही मुस्लिम 265, और वो हदीस तो आपने सुनी हुई है ना कि इन अल्लाह जमीलुन जो हिब्बुल जमाल। फिर शोहरत के लिबास से बचना चाहिए। ये कैसे होता है? दो तरह से, नोट कीजिएगा। देखिए, शोहरत का लिबास एक तो वही है जो आप फ़ौरन समझे, फ़ख्र के लिए पहनना, अबू दाऊद 4029। लेकिन एक और लिबास है, फ़कीरों का लिबास, जाहिदों का लिबास, ख़ास लिबास, फटे हुए जान के पहन लेना। एक ख़ास लिबास ही इसलिए कि हमें लोग बहुत सादा समझें। तो दो तरह से आप बड़े बनते हैं लिबास में, एक बहुत फ़ख्रिया दुनियादारों में फ़ख्र, और एक बहुत नेक बनने के लिए एक ख़ास गेटअप में रहना। नॉर्मल, कभी अच्छा कभी बुरा, आम तौर पर रखिए। फिर मर्दों को रेशमी लिबास और सोना पहनना हराम है, औरतों के लिए हलाल है, बुखारी 5835। फिर इसी तरह मर्द के लिए अंगूठी, गले में चेन, सोने की घड़ी, रेशम के कपड़े हराम है, चाहे वो धुलाई क्यों ना हो जी, और चाहे वो ससुराल से क्यों ना आए हो। बिलीव मी, बुखारी की रिवायत है 5839, मुस्लिम 5429। 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने पिक्चर दिखाई, बिलीव मी कि मुझे उसको देखकर जो तकलीफ़ हुई, और मैं सोच रही थी कि इसकी कसर रह गई, और ये क्या वाकई रियल तस्वीरें हैं या लोगों ने क्रॉप करके बनाई हुई है। दुल्हन के कपड़े और उसका मैचिंग दुपट्टा दुल्हा के हाथ में और बाजुओं में, आप जरा सोचिए तो सही, क्या ये दीन का मजाक नहीं है? और दूल्हा गरारे में और लंबी सी शर्ट में, बिल्कुल 100% औरत का लिबास। तो मैंने उसके बाद देखकर क्या कहा या सोचा कि अब कुछ देर के बाद ये चलेगा तो फिर फिगर भी औरत के बनेंगे। औरत को जो जैसे सजते हैं मर्द को तो वैसे वो नहीं सजेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, और अगली बात मर्द औरतों के और औरतें मर्दों की तशबीह ना करें। बुखारी की रिवायत है 5885। इस पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी, किताबुल लिबास है तफीमु सुन्ना सीरीज़ की, लिबास के मिसाइल हैं कुछ इस तरह का उसका नाम है, लंदन में हमने पढ़ी थी तकरीबन 2 साल पहले पूरी बुक, आप उसको सुन लीजिए। आप अपने शौक से सुन लें जितना सुनना चाहें, लेकिन आपके ए टू जी सारे सवालों का जवाब उसमें है। लेकिन क्या हमें ये मौजू सुनना और पढ़ना चाहिए? लोग हमारा क्या देखते हैं? लिबास ही तो देखते हैं, तो क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, इसमें बहुत तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत के साथ बातें हुई हुई हैं टॉपिक वाइज। फिर गैर मुस्लिमों के लिबास की मुशाबहत नहीं करनी चाहिए। मुस्नद अहमद 92 जिल्द नंबर 2। पाक कपड़े से बना हुआ लिबास होना चाहिए, नजासत जायज़ नहीं है तो नजस चीज़ नहीं, मसलन सुअर या कुत्ते की खाल के बने हुए कपड़े, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। फिर इसी तरह से 70 औरत का जो है या मर्द का जो है, कम से कम हिस्सा वो है कि जो ढपता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ 70 ही छुपाया जाए। इश्तहा बढ़ाने वाला, जज्बात को भड़काने या बेहयाई को आम करने वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। सूरत अहज़ाब 59 नूर 31। ना तंग हो इतना और ना बारीक हो, दो लफ्ज़ लिख लीजिए, शफाफ ना हो बस साफ ना हो। शफाफ मीन सी थ्रू और बस साफ स्ट्रेची, इतना खिंचा हुआ कि जिस्म का एक एक वसफ बयान हो जाए, पतली कमर मोटी कमर, पतली टांगे मोटी टांगे। देखिए खाल के ऊपर एक खाल ही तो नहीं पहननी ना, अल्लाह ताला इंसान को जानवरों से अलग करना चाहता है। जानवरों के ऊपर अल्लाह ने एक रंग की खाल चढ़ा दी, अब जेबरा देख लीजिए, काला सफ़ेद है ब्राउन सफ़ेद है, एक ही रंग है, आपको मुझे वैरायटी दी। तो अगर हम जिस्म के ऊपर फिर एक इतना बारीक और पतला लिबास पहन लें कि जो हमारे लिए यानी और भी ज़्यादा अट्रैक्शन का जरिया हो, तो वो नहीं पहनना चाहिए। अब इस एंगल पे हर एक सोचे, देखिए जो कपड़े जो लिबास आप घर में पहनते हैं वो बाहर नहीं पहन सकते, और जो लिबास शौहर के सामने पहन सकते हैं वो बाप भाई के सामने नहीं पहन सकते, और जो लिबास आप दूसरी औरतों में भी नहीं पहन सकते वो भी हदें हैं। ये पूरा टॉपिक उसमें डिटेल से है, मेरा लिया 4-5 दिन का हमारा वो पूरा सेशन गया था, वो सुनने के लायक है। फिर इसी तरह इतना लंबा कपड़ा औरत का पहनना कि उसके पीछे लटकता जाए, इजाज़त नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, फर्शी गरारे टेल वाले कपड़े जायज़ नहीं है। इतना लंबा औरत पहने कि कदम छुप जाए और दुपट्टा ऐसा हो जो सर और गर्दन और सीने को छुपा ले। तिरमिजी 1731, अबू दाऊद, सूरह नूर की आयत 31 ही ले लीजिए, उसमें सब कुछ आएगा। मर्दों का लिबास इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि टखनों से नीचे लटक रहा हो। बुखारी 5787। कमीज़ नबी सल्लम का पसंदीदा लिबास थी, अबू दाऊद 4025। अमामा यानी जो मर्द सर पे पगड़ी की तरह पहनते हैं, कुछ हिस्से को कंधों के दरमियान लटकाना मसनून है, तिरमिजी 1736। कोई भी पहने लिबास तो दाई तरफ से शुरू कीजिए, ये सुन्नत है, 1766 तिरमिजी। कपड़े और जूते उतारते हुए बाई तरफ से उतारने शुरू कीजिए। अब लिबास के अंदर कई चीज़ें हैं, मसलन आप देखिए कि जेवरात भी कई चीज़ों के जाहिर किए गए हैं। हमारे कल्चर में आप देखिए कि मर्द अमूमन जेवर नहीं पहनते सिवाय अंगूठी के, मर्द को सोने की अंगूठी नहीं पहननी, अगर पहननी भी पड़े कोई तो ऐसी धात हो जो सोने की ना हो कम से कम। जब नया कपड़ा पहने तो दुआ पढ़े, किसको आती है? अल्लाह के नबी जब कोई नया कपड़ा हासिल करते तो कमीज या पगड़ी वगैरह तो दुआ कर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दो, ए अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए है, अंत कसौतनी ही तूने मुझको ये पहनाया, अस्सलुका मिन खैरी ही मैं इसकी खैर का सवाल करता हूँ, व खैरा मा सुनिया लहू और उसकी भी खैर जिसके लिए ये बनाया गया, वाउज़ुबिका मिन शर्री ही व शर्री मा सुनिया लहू और इसके शर से बचता हूँ और जिस शर पे ये हुआ। इसी तरह नया कपड़ा किसी को पहना देखे तो क्या करना चाहिए? नया जोड़ा कहाँ से लिया है, किस बुटीक का है, कितने का लिया है, ये करना चाहिए, और जलना चाहिए, कुड़ना चाहिए, और शौहर को फोन करना चाहिए? नहीं, खुश हो। देखिए लिव एंड लेट टू लिव, जी और जीने दो। मोमिन हमेशा दूसरों को देख के खुश होता है। दुआ क्या देनी है? एल्बिस जदीदन वैश हमीदन व मुत शहीदन इब्ने मादा 3558। तुम्हें नया लिबास, काबिले तारीफ़ ज़िंदगी और शहादत की मौत नसीब हो। कितना प्यारा दीन। और जब आप ये पढ़ेंगे करेंगे तो उसके बाद आप बताइए कि दिलों में कीने और बुग़्ज़ रहेंगे नहीं रहेंगे। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को दूसरों के लिए खोल दे। किसी हद तक हमने ये सारी बातों को कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी पूरा हक नहीं अदा हुआ। अपने आप को दूसरों के लिए खुशी का ज़रिया बनाएं। आपको मुझे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत दूसरों के लिए काबिले बर्दाश्त, काबिले तारीफ़ बनानी चाहिए। ला दरर वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ़ दो ना तुम्हें कोई तकलीफ़ दे। मिन हुस्न अल इस्लामी तरकुहु माला, यानी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इंसानी अदाब में पढ़ेंगे।